Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
धन्यवाद निशित और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। अगले आधे घंटे में हम देश दुनिया के आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे और आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भी मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ निशित।
द हेडलाइंस, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड, इंक्रीजेस जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8% फॉर द करंट फिस्कल ईयर। Benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 700 points. Nifty closes above 24,800. And Cabinet approves mission for Atmanirbharta in pulses scheme to benefit 2 crore farmers.
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़े। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की बढ़त। निफ्टी 24,800 के पार। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन को स्वीकृति दी। 2 करोड़ किसानों को होगा फायदा।
With the RBI MPC today, the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.5%. Announcing the fourth bi-monthly policy of the current fiscal today, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee MPC has decided to continue with a neutral stance. The central bank has revised its GDP growth estimates for the current fiscal year to 6.8%, up from its earlier estimate of 6.5%. It has also projected inflation rate at 2.6% for the current financial year, lower than the earlier forecast of 3.1% stated in August. The governor expressed confidence that the GST rate rationalization would lead to a reduction in prices.
After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged. The recently implemented GST rate rationalization would also lead to a reduction in prices of several items in the CPI basket. Overall, the inflation outcome is likely to be softer than what was projected in August, primarily on account of the GST rate cuts and benign food prices. Despite an external environment that has deteriorated since the August policy, the Indian economy remains poised to register high growth.
आइए अब नजर डालते हैं कि देश में शेयर बाजारों का क्या हाल रहा है। देश के शेयर बाजारों में आज उत्साह बना रहा। 8 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल देखा गया। हालांकि शुरुआत में दोनों सूचकांक थोड़े झिझके से लगे, लेकिन दिन के कारोबार में दोनों लगभग 0.9% ऊपर आ गए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 716 अंक बढ़कर 80,983 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 225 अंक ऊपर 24,836 पर आ गया। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.2% बढ़कर बंद हुआ।
द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स एंड निफ्टी स्नैप्ड देयर 8th session लूजिंग स्ट्रीक टुडे आफ्टर ओपनिंग ऑन अ फ्लैट नोट। द इंडेक्स सर्ज्ड ड्यूरिंग द intraday trade to close around 0.9% higher following the release of the RBI's Monetary Policy Committee report. The market responded positively to the policy cues. The Sensex gained 716 points to close at 80,983, while the Nifty added 225 points to settle at 24,836. The broader market indices of the Bombay Stock Exchange closed in the positive zone. The mid-cap index increased 0.9% and the small-cap index almost added 1.2%.
और देखें कि सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों के शेयर कैसे रहे आज? आज 30 में से 22 कंपनियों के शेयर बढ़कर बंद हुए। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें, टाटा मोटर्स के शेयर 5.5% बढ़े, कोटक बैंक के 3.4% ऊपर आ गए और ट्रेंट में 3.3% का फायदा देखा गया। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें, बजाज फाइनेंस 1.1% नीचे, स्टेट बैंक 1% और अल्ट्राटेक सीमेंट 0.9% नीचे बंद हुआ।
And among the sectoral indices, the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors logged gains. Among the top gainers, BankEx advanced over 1.4%, telecommunications rose almost 1.3% and the financial services added over 1.2%.
और रुपए का हाल बता दें निशित, कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 88.69 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक 97.72 पर था। चले आज फिर हम एकेबी के पास, कि आज काफी खबरें हैं। एमपीसी ने बेशक रेपो रेट में बदलाव नहीं किए हैं और ये भी एक बड़ा संकेतक है, और इसके अलावा जो असर देख रहे हैं हम उसका बाजार पर एकेबी, खासकर बैंकएक्स पर, अगर निफ्टी बैंक पर, तो बड़ा जबरदस्त असर रहा है।
एकदम आपने सही कहा कि हालांकि जो जो हेडलाइन जो न्यूज जो है उससे नहीं है, बल्कि जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट में जो परिवर्तन लाया गया है, करीबन 22 ऐसे परिवर्तन किए गए हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन जो वो है, वो एक जो बैंक की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो थी, जो मर्जर एंड एक्विजिशन में जो फाइनेंसिंग का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी इस अभी तक फॉरेन बैंक को ही मिली थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी भारतीय बैंक को नहीं थी। तो और M&A स्पेस बहुत काफी तरह से इसकी वृद्धि हो रही है, प्रसार हो रहा है और ये एक फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू है। तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ये मर्जर एंड एक्विजिशन की जो स्पेस जो है उनके लिए एक्विजिशन में जो फंडिंग करने की जो एक रोक थी इंडियन बैंकों के ऊपर, वो हटा दी गई। तो मैं ये समझता हूं ये इससे बैंकिंग जो व्यवस्था जो है वो ना ही सिर्फ आप कॉरपोरेट लेंडिंग करेंगे या रिटेल में ज्यादा दबाव देंगे अपने सेल्स पर्सन को, अब वो जाकर ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन बिजनेस में वो फंडिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हुई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो फाइनेंसिंग होती है वो काफी तरह से NBFC यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी जाती है, उनकी जो रिस्क वेट फैक्टर जो है उसको सिंप्लीफाई और ईजी कर दिया गया है। तो ये दोनों चीजों से जो बैंकिंग सेक्टर जो या NBFC सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जुटे हुए थे उनके लिए काफी काफी अच्छा साबित हुआ है, और इसीलिए जो आप जो बैंकेक्स की बात कर रहे हैं उसमें इतनी बड़ी उछाल आई है।
AKB ऑफ कोर्स द रेपो हैज बीन रिटेन्ड एट 5.5% एंड द GDP एस्टिमेट हैज बीन हाइक्ड येट अगेन टू 6.8% फ्रॉम द अर्लियर 6.5%, एंड ऑफ कोर्स द इन्फ्लेशन रेट हैज आल्सो बीन projected at 2.6% for the current financial from the earlier 3.1%. Now, all this is really great, and of course, we know that the GST rationalization has also come leading to reduction in prices and all. Now, having said that, the headwinds that the economy, particularly we are talking of the Indian economy, is encountering with the Trump tariffs and the H-1B visas and other geopolitical tensions, do you see this momentum kind of getting sustained in the near future or in the long term as well?
Well, I think if you look at the RBI monetary policy statement and along with the monetary policy report, which was also released today, which many of us have not actually had the opportunity of looking at, you will see that the monetary policy approach has been rather guarded. In spite of higher growth, in spite of lower inflation, the Monetary Policy Committee members have unanimously stuck to a target rate of repo rate, keeping it unchanged. So, and that is because of a couple of factors. They feel that the changes in the inflation trajectory, the changes in the growth dynamics, keeping in mind what is happening in the world, might change. GST rate transmission may actually bring about the inflation to be more under control. So all these factors are very, very important, which we can discuss later.
Right.
और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बातें. ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. आज मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और जिनमें सबसे अहम फैसला वैसे कहा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह है कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को स्वीकृति दे दी गई है. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से यह एक ऐतिहासिक पहल है. आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन मिशन से वर्ष 2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीजों, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा.
आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है. 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे. सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना. दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना. अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना. थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना.
और इसके अलावा विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है. श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे केंद्र सरकार के 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा. ये बढ़ोतरी इस वर्ष की 1 जुलाई से प्रभावी होगी. एकेबी, ये सारे फैसले बहुत बड़े हैं और इन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद स्वागत है और आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, जिसमें हमारे एक्सपर्ट एके भट्टाचार्य अभी चर्चा करने वाले हैं कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है. पहला तो एके भी, जो दलहन के लिए आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है कि अगले 6 साल में इसके प्रोडक्शन को काफी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारतीय शायद दुनिया में सबसे ज्यादा दाल खाते हैं लेकिन अभी भी हम दाल के बहुत बड़े आयातक हैं.
एकदम आपने सही कहा कि इस वक्त जो हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो करीबन 250 लाख टन की होती है और इससे भी हमें कभी कभी उससे भी आयात करना पड़ता होता है. तो ये जो 350 लाख टन की जो एक टारगेट रखी गई है 2030 तक, मैं समझता हूं कि ये एक तरफ जो हमारी जो आत्मनिर्भरता जो है, जो डोमेस्टिक डिमांड जो मीट करने के लिए उससे मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि जो कृषि में जो दलहन जो होती है,
जो शिफ्ट है जी,
जो शिफ्ट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ज्यादातर किसान ये गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं और वो हमारी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है इरिगेशन के लिए जरूरत होती है वो ठीक नहीं है. और जो दलहन जो है उसकी जो प्रोटीन वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छी बेहतर है. तो ये सार्विक रूप से मैं समझता हूं कि ये सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, ये कृषि के स्वास्थ्य का भी बात है और देश के लोगों का भी स्वास्थ्य की बात है. किस तरह से जो आम इंसान किस तरह से और भी जो दलहन का जो उपभोग कर सके, उपभोक्ता बने, जिससे कि उसकी जो स्वास्थ्य है और भी ठीक रहे.
जी अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, देश के पर्यावरण का भी स्वास्थ्य ठीक रखें और पानी भी बचाएं। इसके अलावा जो डीए बढ़ाने की घोषणा की गई है, काफी बड़ा असर
पड़ेगा क्योंकि सारे सरकारी जो कर्मचारी जो हैं, जैसे आपने नंबर बताया जो करीबन 4 मिलियन जो हैं करीबन और उससे भी ज्यादा पेंशनर्स जो
पेंशन वाले हैं हमारे
68 लाख सो सब मिलाकर जो 3% का डीए लगता है कम है, पर एक्चुअली कम नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे उसके हिसाब से ये कम नहीं है और ये फेस्टिवल का मौका है। ये एक तरफ से आपका जीएसटी रेट घटा, दूसरी तरफ से डीए का रिलीज होगा, तो फेस्टिवल टाइम में जो इकोनॉमिक जो डिमांड की जो बूस्ट जो करने की जो एक जो हमने एक एक टेंडेंसी अब जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी देखी है उसको भी ये बढ़ावा देगा और शायद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो डिसीजन जो है उसको भी एक सपोर्ट दे सकता है।
लोगों की जेब में पैसे होंगे तो बाजार में भी पैसा आएगा।
कुडंट हैव कम एट अ बेटर टाइम मेके भी। एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, द इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टेपा came into effect from today. The agreement was signed on the 10th of March last year in New Delhi. TEPA is India's FTA with 4 developed European nations, including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. The Ministry of Commerce and Industry, in a statement, said the agreement offers binding commitment of $100 billion investment in India in the next 15 years. It would also facilitate generation of 1 million direct jobs through such investments. Speaking exclusively to Akashwani, Dr. Ranjit Mehta, Secretary General of the PhD Chamber of Commerce and Industry, highlighted the benefits of the India EFTA agreement for exporters.
India's trade and economic partnership agreement with the EFTA marked turning point for our exporters and investors. The pact opens premium European markets for Indian goods like textiles, pharma and food products. With EFTA's $100 billion investment commitment over 15 years, this agreement is set to create jobs, boost manufacturing and deepen India's role in global value chains. It's a win-win for trade, technology and trust both.
It's time now for a quick break, but do stay tuned in because we have lots of other things coming on the other side. Welcome back. You're tuned in to the Market Mantra on Akashwani. AKB, EFTA, TEPA and FTA. This EFTA and TEPA is coming into effect from today, of course, which was signed last year in March. Now, if we look at the current geopolitical situation, China, if we look at China, it has kind of made some kind of an embargo, not embargo exactly, but yes, some kind of a break on the export of the semiconductors, fertilizers. And of course, we are looking at the U.S., how it is kind of piling on tariffs after tariffs. Now we hear 100% tariffs in Indian cinema produced outside the U.S. and of course, the H-1B visa and other tariffs, pharmaceuticals and all. Now it becomes that much more imperative for India to look for other avenues like the Latin American countries. Our Honorable Prime Minister has been visiting, you know, and kind of trying to kind of make a connect with countries which was hitherto not very well known in the economic circles. Now, how do you find this kind of, you know, this outreach of the Indian government with these kind of countries, with these unknown kind of hitherto unknown kind of economies in kind of trying to offset the tariffs and of course then other headwinds which we are staring at?
Well, you know, as you rightly pointed out, the significance of EFTA is not with the agreement with these countries, with the Liechtenstein, Norway, Switzerland.
Yes,
because they are small countries, small markets. But the significance of it lies that this might give us a window to other markets. That's number one. Number two, that this agreement might be the kind of a benchmark for our other agreements that are coming up. For example, the European Union Commission.
Right.
That agreement is, the talks are going on. We are having another round of review of the ASEAN Free Trade Agreement. We may like to look at our Japanese free trade agreement and see. So the EFTA will provide us a kind of a benchmark for concluding similar agreements that opens up new markets for us. The third and the most important thing is that this EFTA agreement is actually linked trade with investment, in the sense that it is not just a question of allowing easier and free access to trade in both the regions, both the three countries and India, but also it is linked to how EFTA countries will have to invest more into India. As you read out that there is a figure mentioned which says something around $100 billion investment,
right,
which should result through
this in the next EFTA. 15 years or so. Yes.
I think that's another big advantage. Yes, trade does create employment, but investment, if it is linked to that, will create more jobs. So therefore, that is the way we should look at and welcome this new agreement that is starting off from today.
Okay. और अब नजर डालते हैं कि एशिया और यूरोप के बाजारों का क्या हाल रहा है. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% ऊपर और सिंगापुर का स्ट्रेट साइम्स 0.5% बढ़कर बंद हुआ. उधर जापान के निकेई इंडेक्स में 0.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. हांगकांग और चीन में छुट्टी की वजह से बाजार बंद रहे. ताजा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांक आज सकारात्मक थे. लंदन के फुटसी में 0.6% और जर्मनी के डैक्स में 0.5% की बढ़त देखी गई, जबकि फ्रांस का कैक 0.3% ऊपर था.
एंड मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स नाउ, द वॉल स्ट्रीट थ्री मेजर इंडिसेस क्लोज्ड इन पॉजिटिव टेरिटरी आफ्टर अ चॉपी ट्रेड सेशन ऑन ट्यूजडे एज इन्वेस्टर्स ब्रेस्ड for a U.S. government shutdown. The S&P 500 gained 0.4%, the tech-heavy Nasdaq Composite Index closed 0.3% up, and Dow Jones Industrial Average added almost 0.2%. The U.S. government has officially shut down for the first time in nearly 7 years. The shutdown comes after Republicans and Democrats in Congress failed to reach an agreement on a spending bill. This will temporarily halt some U.S. government services and put the salaries of several government employees on hold. It could be this shutdown. We have been seeing the shutdown happening off and on in the U.S. Of course, this is happening for the first time in 7 years. But how does it actually affect the capital market? And of course, we are talking not just of the U.S. markets, but the Indian markets as well.
Well, you know, it doesn't really directly affect anything to do with the markets or the trade, which is in the private sector. What it does affect is the government services. For example, even the government support services. But then even in the government services, there are some exempted categories like the civil aviation services, they will be exempted. So I think it affects the government system to a great extent, but it doesn't have much of an impact on the private sector initiatives or economic activities, but has a larger psychological impact on the global environment, that whether the world's largest, biggest country, most powerful country cannot get its politics right to get its spending bills passed in time.
Correct. And now moving on to crude. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 0.4% down at $65.76 per barrel, while the WTI crude was also trading over 0.4% down at $62.11 per barrel when reports last came in. And into the bullion market, in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.7% up at 1,18,250 rupees per 10 grams, and silver was trading more than 1.7% up at 1,44,700 rupees per kilogram a short while ago.
और MCX में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 0.5% बढ़कर 1,16,434 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.7% बढ़कर 1,44,642 रुपए प्रति किलो पर थी. एकेबी मार्केट मंत्र में आने और आज के समाचारों पर विस्तार से चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
नमस्कार.
And before we close, a reminder of the headlines. RBI keeps repo rate unchanged, increases GDP forecast to 6.8% for the current fiscal year. Benchmark domestic indices gain nearly 1% since it surges over 700 points. Nifty closes above 24,800. And Cabinet approves mission for Atmanirbhar Tain Pulses scheme to benefit 2 crore farmers. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Pakistan.